सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो।
जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी।
ओम शांति। यहाँ पर पांडव भवन में हम आते हैं और खास इधर हिस्ट्री हॉल में आते हैं तो हमको विशेष रूप से साकार बाबा मम्मा की याद आती है क्योंकि आप में से देखा है किसी ने अब सब तो बाद में बाबा के बने ना, किसी ने नहीं देखा सरकार में। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि जैसे बचपन में ही हम ज्ञान में आ गए थे अपने लौकिक माता पिता के साथ तो 10 वर्ष तक जैसे बाबा की हम पालना मिली बाबा मम्मा की। तो आपको थोड़ा सा वही अनुभव सुनाते हैं। जैसे पहली बार जब हम मधुबन आए थे और बाबा से मिले थे उस समय मैं 7 वर्ष की थी कि 6 साल की आयु में ही हम ज्ञान में आ गए थे और जैसे 1 साल के बाद आते हैं मधुबन तो लौकिक माता पिता के साथ हम आए थे। जैसे तब हमारा ब्राह्मण परिवार तो बहुत छोटा था और ये पांडव भवन भी छोटा सा ही था तो जैसे बाबा हमारा मिलना हुआ तो उस समय पर इतनी छोटी आयु में जैसे आप समझ सकते हैं कि ज्ञान की तो बहुत गहराई नहीं समझ में आती थी लेकिन जो हमको बाबा से और यहाँ पर दादियों से मम्मा से सभी मधुबन निवासियों से बहुत प्यार जो मिलता था तो उस प्यार के आकर्षण से ही हम बार बार फिर यहाँ पर आते थे। तो जैसे बाबा को भी जब हमने देखा तो जैसे आप बाबा के चित्र में भी देखते हैं कि बाबा की जो पर्सनैलिटी थी जो व्यक्तित्व था तो उसमें वैसे तो बाहर से देखने में बहुत ही साधारण जैसे सादगी थी लेकिन उतना ही महानता थी। तो जैसे सादगी और महानता का जैसे बैलेंस था तो जो बाबा के चेहरे पर वो रूहानी चमक और वो नशा वो फलक वो जैसे दिखाई देता था बहुत तेज देखने में आता था। तो जैसे बाबा से पहली बार हम मिले तो बाबा जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके बच्चों से मिलते थे तो बाबा जब दृष्टि देते थे बच्चों को तो जैसे शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं और हमको भी बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है तो जैसे बाबा जिस भी आत्मा को देखते थे तो सिर्फ बाबा उसका वर्तमान नहीं देखते थे लेकिन तीनों कालों को जैसे बाबा के सामने उसके तीनों काल आ जाते थे कि पहले ये क्या थे अब क्या हैं आगे क्या बनने वाले हैं। तो जो भी बाबा के मुख से बोल निकलते थे बच्चों के प्रति उस आत्माओं के प्रति वो जैसे उनके लिए वरदान बन जाते थे। तो जैसे हमारी लौकिक माता जी परिचय जैसे दिया गया तो हमारी लौकिक माता जी का नाम लौकिक नाम माया था तो जब बाबा को ये परिचय दिया तो बाबा ने कहा कि माया तो सबको खा जाती है तो ये नाम तो अच्छा नहीं है। तो जैसे बाबा ने उनको दृष्टि दी और 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर आंखें खोली और उनको नाम दिया गीता तो उनको कहा कि आज से तुम राम की सच्ची सीता हो और सच्चा गीता ज्ञान सुनाने वाली गीता हो तो गीता नाम जैसे दिया। तो वो हम देखते थे कि जैसे बाबा के बोल साधारण नहीं होते थे। जैसे लौकिक में भी माँ बाप या गुरु हम दे देते हैं, लेकिन बाबा ने जो नाम जैसे बाबा देते थे ना, तो वो वरदान बन जाता था। जैसे मैंने बताया कि बाबा तीनों कालों को देखकर उस आत्मा का भविष्य जैसे सामने देखकर कि भविष्य में इस आत्मा को क्या सेवा करनी है, उस अनुसार बाबा जैसे महावाक्य बाबा के होते थे। तो वो नाम जैसे हमारे लौकिक माता जी के लिए वरदान ही बन गया, क्योंकि तब से लेके ही उनका मुख खुला। क्योंकि पहले तो जैसे आज से 45-50 साल पहले आप सबको मालूम है कि हमारे भारत देश में जैसे छोटी बहू घर में बोलती नहीं थी किसी के सामने, और डर डर के रहते थे, दब के रहते थे, तो वो भी उनका भी ऐसे ही था। तो लेकिन जैसे ही हम यहाँ से वापस गए एक सप्ताह के बाद, और क्योंकि उस समय दिल्ली में 3 सेंटर ही थे, तो हम जिस एरिया में थे वहाँ आसपास कोई सेंटर नहीं था, तो हमने बाबा से पूछा था कि इतना दूर हम रोज तो नहीं जा सकते हैं, संडे को ही जा सकते हैं, तो कैसे रोज हम क्लास करेंगे। तो बाबा ने फिर छुट्टी दी थी कि आप घर में ही जैसे क्लास करो, मुरली पढ़ो। तो उसमें गीता बहन जी ही फिर निमित्त बनी मुरली सुनाने के लिए, क्लास कराने के लिए। तो पहले तो वो किसी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन जैसे उन्होंने ज्ञान, बाबा ने वरदान दिया कि गीता ज्ञान सुनाने वाली गीता हो, तो जो भी घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, जैसे हमारे दादाजी, उनके ससुर, और तो वो हैरान रह गए कि पहले तो ये हमारे सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, तो अभी इसमें कहाँ से ये शक्ति आई है। तो वो सबके सामने जैसे बेधड़क होके शिव शक्ति बन के ज्ञान सुनाती थी, और सभी घर के मेंबर आके बैठते थे। तो इसी प्रकार से जैसे जब मेरे को बाबा ने दृष्टि दी, तो भी बाबा के बोल यही थे। बाबा ने कहा कि ये आत्मा जो है वो यज्ञ की ही है, मतलब पिछले जन्म में भी यज्ञ में थी, अभी यज्ञ में आई है, और इस बच्ची को भी आगे चलकर बहुत सेवा करनी है। तो कहा कि बहुत लाखों करोड़ों आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनना है। तो ये जैसे बाबा के बोल उस समय तो हमको नहीं समझ में आए, लेकिन याद रहे, और बाद में जैसे हम बड़े होते गए और सेवा भी जैसे छोटी आयु से ही शुरू कर दी, तो फिर समझ में आया कि कैसे बाबा के ये वरदानी बोल थे। तो जैसे इन बातों से हमको ये निश्चय हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुनिया में आप देखो, अब जैसे 6-7 साल के बच्चे को देख के भी उसका पास्ट भी बता दे, भविष्य भी बता दे, तो ऐसा संभव नहीं है। या सभी शुभ भावना रखते हैं माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए कि ये बड़े होकर अच्छा काम करें, ये बने वो बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य सिद्ध होता है। उनकी तकदीर क्या है, किस्मत में क्या है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बाबा ने जो बोल बोले, तो जैसे बाबा भगवान ही उनके द्वारा बोल रहे हैं, ये जैसे हमको निश्चय हो गया। और जैसे हम वापस गए तो हमारे लौकिक में भी जो थे उन्होंने फिर हमसे पूछा कि अनुभव कि आपने, जैसे मेरे से ही पूछा, मैं सबसे छोटी थी, कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि भगवान ब्रह्मा तन में आते हैं, आपने क्या देखा भगवान को, तो ऐसे ऐसे वो पूछते थे। तो मैंने उनको एक बहुत छोटी सी बात बताई, सिंपल बात। तो मैंने बोला कि दुनिया में कोई भी मनुष्य जो है वो ये नहीं कहता है किसी को कि मुझे याद करो, कोई कहता है? कोई नहीं कहता है ना, लेकिन मन मना भव माम एकम याद करो, मुझे याद करो, ये भगवान ही कह सकता है। तो ये बोल भाई किसी मनुष्य के नहीं है, तो हमको इसी बोल से, क्योंकि भगवान ही जैसे गीता में भी है, जो गीता बनी हुई है भक्ति मार्ग की, और अभी भी बाबा जैसे बार बार मुरली में बहुत बार ये कहते ना, मुझे याद करो, मुझे याद करो, माम एकम याद करो। तो जैसे वो बोल हमने सन्मुख सुने, डायरेक्ट सुने, तो मैंने मतलब उनको यही बात जैसे बताई कि ये बोल भगवान ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ही कल्याण है। तो कोई भी जैसे लौकिक में भी माँ बाप है, टीचर है, गुरु है, या भाई बहन कोई भी हो, मित्र संबंधी, तो कोई किसी को बोलता थोड़ी रहता है मुझे याद करो मुझे याद करो। तो ये मतलब मनुष्य के बोल नहीं है, तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ये भगवान के ही महावाक्य हैं, इसलिए हमको ये निश्चय है। तो इस ढंग से फिर जैसे हम हर साल, क्योंकि बाबा में जो ये विशेषता थी, जैसे मैं उस समय समझो 8 वर्ष की थी, बाबा 80 वर्ष के थे, तो जनरेशन गैप आयु का तो बहुत गैप था, लेकिन जैसे कभी भी हमको ऐसा संकोच नहीं होता था, ये जैसे नहीं लगता था कि ये इतने बड़े बाबा हैं, इनसे हम मिलने कैसे जाएं, क्या बात करें, क्योंकि वैसे भी वह इतने बड़ा संस्था के हेड हैं, तो मतलब 8 साल की आयु में वो हो सकता है संकल्प। लेकिन बाबा में ये विशेषता थी कि बाबा जैसे बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग, जवान के साथ जवान, युवा के साथ युवा, और बच्चों के साथ जैसे बाबा बच्चा बन जाते थे, तो समानता, तो समानता में जैसे बात करना सहज होता है ना, तो इतना मतलब बाबा प्यार देते थे, और एकदम जैसे निरहंकारी बाबा थे कि हमको लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े बाबा हैं, और जैसे दिल खोल कर हम उनसे बात कर सकते थे, जैसे समानता है, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। और बाबा ने जैसे हमको खुली छुट्टी दी हुई थी, जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण परिवार तो छोटा सा ही था, थोड़े से ही बच्चे होते थे, तो यहाँ मधुबन में भी थोड़े ही रहते थे, 50-60, और जैसे हमारा ग्रुप आया तो एक ही पार्टी जैसे आई है, तो और तो इतना कोई भीड़ होती नहीं थी। तो बाबा जैसे खुली छुट्टी हमको दी हुई थी कि आपको जब भी बाबा के कमरे में आना हो, बाबा से मिलना हो, आप आ सकते हो। तो अभी तो जैसे परिवार बढ़ गया है, और दादी से मिलने के लिए भी पूछना पड़ता है, टाइम लो, ये करो, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। तो जब भी यानी हमको जैसे सुबह गुड मॉर्निंग करने जाएंगे, फिर दिन में भी कई बार हम चले जाते थे, तो थोड़ा सा पर्दा हटा के मैं देख लेती थी कि बाबा के पास कोई बैठा तो नहीं है, बाबा फ्री हैं या क्या कर रहे हैं। तो अगर बिजी होते थे तो हम वापस चले जाते थे। जैसे दिन में भी भोजन के बाद जो बाबा के कमरे में खटिया है ना, तो उस पर ही बाबा लेटे होते थे। तो बाबा को कोई ऐसी बहुत गहरी नींद तो आती नहीं थी कभी, जैसे योगियों की नींद होती है, सात्विक होती है, बाबा कहते जागृत अवस्था ही होती है। तो थोड़ा सा ही मैं पर्दा हटाती थी, जैसे बाबा को आहट सुनाई देती थी, तो बाबा प्यार से बुलाते थे, आओ बच्ची, आओ मीठे बच्चे, ऐसे। तो फिर हम बाबा के साथ वहीं बाबा की खटिया पर ही जाके हम बैठते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 8-9 साल की उम्र में क्या बात होगी हमारे पास, कोई घर की समस्या या कोई बड़ी बड़ी बातें तो थी नहीं, तो भाई स्कूल में ऐसा हुआ, सहेलियों की बातें, ये बात जैसे वही होता है। तो वो भी बाबा प्यार से सुनते थे, तो जो भी आते थे बाबा को, तो बाबा प्यार से सुनते थे, टाइम देते थे। और जैसे बाबा की बहुत साधारण बात में भी बहुत गहरी शिक्षा जैसे समाई हुई होती थी, तो बाबा का जो शिक्षा देने का ढंग था वो बहुत अच्छा था। तो पहली बात ये कि हमने कभी भी जो है बाबा मम्मा को, इतना बड़ा यज्ञ जैसे चलता था, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि बाबा मम्मा यहाँ बैठकर किसी, ये हॉल तो बन गया था बाद में, और यहाँ इस गद्दी पे बाबा और इधर मम्मा बैठती थी, कि जैसे बाबा मम्मा बैठकर, और जैसे अभी तो होता है ना हम ड्यूटी लगाते हैं, ये आपको ये से, आप लोग भी यहाँ सेवा में आए हैं, तो ये आपको सब्जी काटने की सेवा, इतने बजे इधर जाना, ये करना, वो करना। तो बाबा मम्मा कभी भी ऐसे बैठकर सेवा नहीं बताते थे कि आपको ये काम करना है, आपको सफाई करनी है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो भी जिस दिन सेवा करनी होती थी, तो बाबा मम्मा खुद वो करना शुरू कर देते थे। जैसे क्लास के बाद एकदम भंडारे में जाके भाई सब्जी काटनी है, अनाज साफ करना है, ये करना है, तो बाबा मम्मा खुद पहुंच के चुपचाप करना शुरू कर देते थे, बोलते नहीं थे किसी को कि करो। तो फिर जैसे सारे मधुबन में आवाज फैलता था कि क्योंकि सभी को होता था जहाँ बाबा मम्मा है वहीं हम जाएं, तो आकर्षण से जाते थे कि बाबा सब्जी काट रहे हैं, बाबा भंडारे में गए हैं, बाबा उधर गए हैं, बाबा उधर गए हैं, ये कर रहे हैं, तो सब बच्चे जैसे पीछे भागते थे और बाबा के साथ बैठ के वो काम करना शुरू कर देते थे। तो जैसे कर्म करके बाबा हर एक बात सिखलाते थे, मुख से बोलकर नहीं। इसी तरीके से जैसे क्लास के बाद हमेशा पहाड़ों पर सैर के हमको ले जाते थे, तो यहाँ ये सामने जो शांति स्तंभ बना है तो ये खुला आंगन होता था, ये ट्रेनिंग सेंटर भी पहले नहीं था, तो यहाँ पर बाबा खेलते थे, ये प्लेइंग ग्राउंड होता था, तो क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ, और जैसे जो भी पार्टी आती थी तो हफ्ते में एक दिन बाबा मम्मा के साथ भोजन होता था हमारा उस पार्टी का अलग से, और गुरुवार के दिन सभी इकट्ठे मतलब ब्रह्मा भोजन करते थे, तो उसमें भी सभी नीचे, ये डाइनिंग टेबल चेयर उस समय पे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर भी इस हिस्ट्री हॉल में भी हमने बहुत बार जब ये बन गया तो यहाँ ही नीचे, और बाबा मम्मा भी उसी लेवल में बैठेंगे, कोई विशेष आसन गद्दी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जैसे हम वो निरअहंकारिता और बहुत सादगी उनके जीवन में हमेशा देखते थे। तो जैसे बाबा के साथ जो भी हम कर्म करते थे ना, जैसे खेल खेल रहे हैं, भोजन खा रहे हैं या सैर करने जाते थे, तो पहले बाबा बच्चों को उस कर्म में बिजी कर देते थे, तो फिर थोड़े समय के बाद जैसे बाबा देखते थे कि अब बच्चों का पूरा ध्यान, जैसे अब हम भी भोजन खाते तो शुरू में याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं ना, भोजन में ही ध्यान चला जाता है या आपस में बातचीत करने, तो खेल में भी ऐसे ही होता है। तो फिर बाबा अचानक से सवाल पूछते थे कि बच्चे किसके साथ भोजन कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ सैर कर रहे हो, तो ऐसे हम जवाब देते थे बाबा के साथ। तो बाबा पूछते थे कि कौन से बाबा के साथ, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा, तो फिर हम कहते थे शिव बाबा के साथ। तो बाबा कहते थे शिव बाबा कहाँ है, शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है परम धाम में, कहाँ है शिव बाबा दिखाओ। तो फिर हम कहते थे ब्रह्मा बाबा के साथ। तो बाबा कहते थे इसका मतलब तुम सिर्फ ये साकार देहधारी को देख रहे हो, शिव बाबा तुमको याद ही नहीं है। तो दोनों ही उत्तर में बाबा कहते थे तुम फेल हो गए, दोनों रॉन्ग है। तो राइट उत्तर फिर बाबा ऐसे समझाते थे कि तुम शिव बाबा के साथ बातचीत नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, खा नहीं सकते, सैर नहीं कर सकते, जब तक वो ब्रह्मा तन में नहीं आए, और ब्रह्मा ब्रह्मा तभी बना जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। जब तक शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई तक तो वो साधारण ही मनुष्य था, तो इसलिए ये कंबाइंड है। तो जब भी आप बोलो बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा से मिल रहे हैं, तो बुद्धि में बाप दादा कंबाइंड रूप होना चाहिए। तो ऐसे तब बाबा ने फिर तीन चार हमको अभ्यास कराया। तो बाबा ने कहा कि जब भी मिलो तो जैसे बोलो गुड मॉर्निंग बाप दादा जी, बाप दादा, तो आपको पक्का हो जाए ये पाठ। तो ऐसे मतलब बाबा खेल खेल में या साधारण रूप से बहुत ज्ञान की गहरी बात समझा देते थे। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि बहुत थोड़े बच्चे बाबा के सामने होते थे, लेकिन जब बाबा मुरली चलाते थे सवेरे तो बाबा की जो दृष्टि होती थी तो उससे मालूम पड़ता था कि जैसे बाबा की दृष्टि बेहद में है, बाबा दूर दूर तक देख रहे हैं। तो सिर्फ जो सामने थोड़े से बच्चे बैठे हैं बाबा साकार में उनको नहीं देख के मुरली चला रहे हैं, लेकिन बाबा तो जैसे विश्व में कोने कोने में जो भी बाबा के बच्चे छिपे हुए थे तो बाबा की नजर जैसे पूरे विश्व में जाती थी। तो उससे बाबा को जैसे ये बहुत बेहद की सेवा और सारे विश्व में ये संदेश पहुंचना चाहिए, हर आत्मा को मिलना चाहिए, और उस समय जैसे विदेश में सेवा नहीं शुरू हुई थी तो बाबा को ये बहुत जैसे उमंग उत्साह था और प्रेरणा थी, बहुत पावरफुल संकल्प था कि फॉरेन में विदेश में जरूर जाना चाहिए ये संदेश, कैसे जाए। तो उस समय पर क्योंकि हमारी दादियां भी वहां से आई थी कराची से यहाँ, तो उन्होंने भी इतनी भाषा अंग्रेजी तो सीखी नहीं थी, हिंदी भी यहाँ आके सीखी, तो इंग्लिश जानने वाली बहनें बहुत कम थी यज्ञ में। तो हमको फिर बाबा ने जैसे ये लक्ष्य दिया कि आपको पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई पढ़नी है और इसी लक्ष्य से पढ़नी है अंग्रेजी सीखने के लिए कि आप इंग्लिश में विभाषण कर सको। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने ऊपर विश्वास हो जाए, तब पढ़ाई छोड़ना ईश्वरीय सेवा के लक्ष्य से ही। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते रहे और घर में ही जैसे सेंटर भी बन गया और ये सेवा भी करते रहे। तो एक दिन जब मैं 10-11 साल की थी, तो तब बाबा ने जैसे हम आए हुए थे, तो यही झाड़ गोले का जो चित्र है, तो बाबा ने सुबह ही डायरेक्शन दिया कि आज रात्रि क्लास में ये आपको अंग्रेजी में समझाना है, मतलब बाबा मम्मा के सामने और सारी सभा में, तो इस पर बताना है। तो हमने कहा जी बाबा, बाबा को तो ना हम करते ही नहीं थे। तो सारा दिन फिर इसका हमने लिखा, फिर उसको याद किया, रट्टा मारा, मतलब ये सब तो तैयारी की। तो रात्रि क्लास जैसे 9 बजे अभी तक भी ये सिस्टम है ना, तो तब भी होता था। तो अब आप सोचो, बाबा मम्मा और सब बड़ी दादी और सब बैठे हैं, तो उनके सामने हमको ये समझाना था, तो बहुत उसमें हिम्मत चाहिए। तो भी मतलब जैसे बाबा की आज्ञा थी तो उसको हमने किया। तो जैसे ये चित्र तो बहुत बड़े बड़े है ना, तो पॉइंटर लेके, वो लकड़ी का पॉइंटर लेके मैंने समझाना शुरू किया। तो जब मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, तो जब बोला कि ये त्रिमूर्ति के चित्र में 3 कर्तव्य जैसे बताते ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये परमात्मा के 3 कर्तव्य है। तो बाबा ने उसी समय मेरे को रोका और सारी, तो मैं थोड़ा डर भी गई कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या पता नहीं क्या हो गया। तो फिर बाबा ने सभी से पूछा जो बैठे थे कि भाई अभी जो ये बच्ची ने बोला, ये राइट बोला या इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो सबने बोला कि राइट बोला, ठीक बोला। तो फिर बाबा ने उसमें करेक्शन दी, क्योंकि बाबा को ये होता था कि बच्चे ऐसे ही नहीं तोते की तरह रटा मार के मतलब बोल दें, लेकिन हर एक बात को समझ के और जो भी बोल बोले वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, समझ के बोलना है। तो फिर बाबा ने तब ये करेक्शन दी। तो बाबा ने कहा कि पहले बोलो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। तो नंबर वार जैसे बाबा के कर्तव्य चलते हैं ना ड्रामा में, पहले बाबा आके नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, फिर विनाश होता है, फिर पालना, तो ऐसे बोलना है। मतलब ऐसे नहीं कि चित्र बना हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सीधा सीधा वैसे ही बोल दो। तब से लेके फिर बाबा ने वो करेक्शन जैसे मुरली में भी सबको दी। तो इस ढंग से जैसे बाबा ने ही हमको भाषण करना है, चित्रों पे समझाना है, वो बाबा से डायरेक्ट बाबा मम्मा ने हमको जैसे यहाँ पर वो ट्रेनिंग दी, जैसे आजकल भी कुमारियों को ट्रेनिंग मिलती है ना, इसी तरीके से एक दिन बोला कि सुबह मुरली से पहले, मतलब बाबा की मुरली से पहले 10 मिनट तुमको किसी टॉपिक पर बोलना है, मतलब भाषण करना है। तो उसकी भी फिर हमने तैयारी की, वो तो हिंदी में ही करना था। तो उस दिन बाबा नहीं आए थे क्लास में, मम्मा बैठी थी, तो मैं थोड़ा खुश हो गई कि चलो बाबा नहीं है तो हम अच्छी तरह बोलेंगे। तो फिर मैंने जब पूरा किया तो फिर बाबा अंदर आए और बाबा ने मुरली शुरू की। जब मुरली शुरू की तो बाबा ने कहा कि मैंने उसमें कुछ मिसाल दिया था, कांटा, फूल और ये सब, तो बाबा ने जो मुरली शुरू की उसमें ही बोला कि अभी जो ये बच्ची सुना रही थी कांटे फूल के बारे में, तो उसी पर ही बाबा ने समझाया। तो फिर मेरे को लगा कि मालूम पड़ा कि तो बाबा ने सुना है सारा, तो कैसे सुना। तो उस समय पर ये सब माइक की सुविधा, भाई हर कमरे में स्पीकर हो, ऐसा नहीं था सिस्टम। तो बाबा बहुत युक्ति युक्त थे, तो आप सबको मालूम है ना, पहले यज्ञ में बाबा मम्मा हमारी सब यहाँ जो बहने रहती थी सब खड़ाव पहनते थे अंदर घर में चलने के लिए, तो बाबा भी खड़ाव पहनते थे। तो वैसे जब भी बाबा आते थे क्लास में तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा जैसे खड़ाव से चलते हैं तो मालूम पड़ जाता है ना। तो उस दिन बाबा आए और भाई मालूम नहीं पड़े तो दरवाजे के पीछे बाबा खड़े रहे और चुपचाप बाबा ने सारा सुना, तो लेकिन आवाज नहीं की, तो किसी को मालूम नहीं पड़ा कि बाबा आ गए हैं, लेकिन बाबा आ गए थे। तो युक्ति रची ना बाबा ने कि भाई मैं मतलब जैसे बच्ची को मालूम भी नहीं पड़े और काम भी हो जाए, कि क्योंकि बाबा सुनेंगे नहीं तो करेक्शन कैसे देंगे, समझानी कैसे देंगे, सिखाएंगे कैसे। तो ऐसे बाबा जैसे क्लास के बाद अभी भी टोली यहाँ पर रोज देते हैं, तो अभी तो हॉल के बाहर ही दे देते हैं ना, लेकिन उस समय में यहाँ हॉल में बैठे बैठे ही सबको टोली बांटी जाती थी। तो उसमें भी रोज बाबा जैसे बुलाते थे तो सबको उमंग उत्साह होता था, भाई हम आगे जाएं, हम टोली बांटे जैसे बाबा मम्मा के सामने जाएं। लेकिन उसमें भी बाबा फिर कंडीशन रखते थे, तो सिखाने का ढंग मतलब बाबा का अच्छा था, तो बाबा फिर धारणा की बात उसमें कहते थे कि वो बच्चा सामने आए टोली बांटने जो कभी भी आंख से आंसू नहीं बहाता है, सदा खुश रहता है, हर्षित मुख रहता है, इसी तरीके से जो कभी क्रोध नहीं करता है, सदा शांत स्वरूप रहता है, मतलब रोज एक एक गुण की धारणा। तो उसमें फिर हर एक को चेकिंग करने का चांस मिलता था ना, अभी हमारे में ये गुण है या नहीं है, तो फिर वो वहीं रुक जाते थे कि आगे कैसे आएंगे टोली बांटने के लिए, तो धारणा करेंगे तो तभी आएंगे। और इसी तरीके से जैसे बाबा जैसे हमको लौकिक पढ़ाई पढ़ने की बाबा ने श्रीमत दी, तो लौकिक बाप माँ बाप जैसे बच्चों की रिपोर्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ऐसे हर साल बाबा हमारा भी वो देखते थे। तो सिर्फ ये नहीं कि अलौकिक पढ़ाई, लेकिन बाबा को ये भी होता था कि लौकिक पढ़ाई में भी पूरा ध्यान दो, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखो, क्योंकि बाबा ये कहते थे कि आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे डिससर्विस हो, यानी जिससे बाहर किसी को भी ये कहने का मौका मिले कि भाई क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने लगे हैं, ये ज्ञान में चलने लगे हैं, तो देखो पहले तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे अभी नहीं आते हैं। तो एक बार ऐसे मेरा थोड़ा ठीक नहीं था रिजल्ट, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में, तो एक बार थोड़ा कम आया तो बाबा ने एकदम कहा कि क्यों, जैसे लौकिक में माँ बाप पूछते ना, ऐसे बाबा ने भी पूछा कि क्यों इस बार अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अच्छी पोजिशन नहीं आई है। तो मतलब बाबा का ये था कि लौकिक में भी चाहे जो भी काम कर रहे हैं, हम जैसे पढ़ाई पढ़ रहे थे, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, या माताएं घर संभालती हैं, तो सबको बाबा यही श्रीमत देते थे कि वहां भी इतना एक्यूरेट काम करो, इतना अच्छा पार्ट बजाओ, सब कुछ ध्यान से करो, जो किसी को भी ये मौका नहीं मिले अंगुली उठाने का, नहीं तो उससे भी बाबा की बदनामी, बाबा का नाम बदनाम होगा, वो भी डिससर्विस होगी कि देखो वहां जाते हैं इसलिए ये अपना घर का ध्यान नहीं रखते हैं, सेवा ठीक नहीं करते हैं, या कुछ भी बोले। और बाबा जैसे हर लौकिक बात को कैसे अलौकिक बनाना है वो भी हमको सिखाते थे। तो आप सबको मालूम है ना कि बाबा के रूम में उस समय पर एक बहुत बड़ा रेडियो होता था, तब तो टेलीविजन वगैरह ये सब नहीं था, छोटे ट्रांजिस्टर वो भी बाद में बने हैं, तो बड़े बड़े रेडियो होते थे ना पहले, तो वो बाबा 8 बजे इंग्लिश न्यूज सुनते थे क्लास के बाद समाचार, और अखबार भी पढ़ते थे। तो लेकिन सब लौकिक दुनिया के सब समाचार सुनते हुए पढ़ते हुए भी पूरा बाबा जैसे कैसे उसको अलौकिक में चेंज करते थे। तो विचार सागर मंथन जैसे बाबा का चलता था, उसमें भी सेवा का ही लक्ष्य होता था। तो एक तो उस समय पर पूरा जैसे अखबार में एक पेज आता था, उसमें सिनेमा का भी होता है ना, जो जो फिल्म आती है उसके नाम होते हैं, उसमें फोटो वगैरह भी तब होते थे। चार मुरली में आपने सुना होगा रिवाइज कोर्स की, तो ये कहाँ से बाबा ने शब्द लिए? तो उन दिनों में एक फिल्म आई थी, एक मुसाफिर एक हसीना, तो वो बाबा ने नाम पढ़ा था, जो पुरानी हमारी बुजुर्ग माताओं ने सुना होगा अपनी छोटी आयु में, तो वो बाबा ने अखबार में पढ़ा, तो उसपे कैसे मतलब एकदम ज्ञान से उसको विचार सागर मंथन करके कि बाबा एक मुसाफिर वो आया है हम सब आत्माओं को हसीन बनाने। ऐसे ही बाबा ने फिर एक दिन कहा कि भाई वो कहते हैं मैं चुप रहूंगी, एक फिल्म आई थी ना मैं चुप रहूंगी, तो बाबा ने कहा कि मतलब वो पढ़ के फिर बाबा ने जैसे कहा कि वो कहते हैं मैं चुप रहूंगी तो तुम बच्चों को भी अपने साथ ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, भाई कोई कितना भी गुस्सा करे अपमान करे गाली दे मैं चुप रहूंगी, मतलब मैं शांत रहूंगी, ऐसे अपने साथ दृढ़ संकल्प करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मतलब अब अखबार में जैसे आता है किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भाई शरीर छोड़ दिया, ये सब वो डालते हैं ना अखबार में, फोटो और नाम एड्रेस होता है। तो उस टाइम में सेंटर तो थे, थोड़े ही थे, लेकिन लोग ब्रह्मा कुमारियों से डरते थे क्योंकि वो मंडली का जादू ये वो उनके बुद्धि में वो था ना, तो नजदीक भी नहीं आते थे। जैसे रास्ते पर भी देखेंगे ना सफेद वस्त्रों वाली कोई आ रही है तो वो रास्ता ही बदल देते थे, इनके आंखों में नहीं देखना है, इनके नजदीक जाएंगे तो हमको भी जादू हो जाएगा, तो वो रोड के दूसरी तरफ चले जाते थे, भाई सामने ही नहीं आना है, इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हमको भी जादू हो जाएगा, ऐसे डरते थे। तो सेंटर में अंदर आते ही नहीं थे तो उनको कैसे लाया जाए, तो उसके लिए भी बाबा फिर युक्ति बताते थे कि क्या करो, क्योंकि बाबा का तो सब विचार चलता था ना। तो बाबा जैसे अखबार में पढ़ते थे भाई ऐसे ऐसे लोग डालते हैं अपना, भाई पिताजी का स्वर्गवास हुआ ये हुआ वो हुआ, तो फिर बाबा ये समझाते थे हमको कि उसमें नाम और एड्रेस होता है तो आप उसको चिट्ठी लिखो उसी नाम और पते पे, और उसको ये लिखो कि ये नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, भाई तुम्हारे पिताजी का ऐसे ही 5000 साल पहले भी शरीर छोड़ा था, अभी भी छोड़ा है, फिर छोड़ेंगे, तो नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं, ऐसे करके उसको लिखो। तो इसमें अशांत दुखी होने की क्या बात है, ऐसे ऐसे मतलब, तो जो भी पढ़ेगा तो या तो उसको गुस्सा आएगा, मतलब एक तो वो दुखी हो रहा है भाई मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आप ये नथिंग न्यू ऐसे बोल रहे हो, फिर से होगा तो भाई ये कौन है लिखने वाला, तो गुस्सा आएगा तो भी वो आपके पास आएगा पूछने के लिए कि आपने क्या लिखा है कैसे लिखा है, और या तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होगी भाई ये क्या बात है, तो दोनों तरीके से वो आपके पास आएगा तो सही पूछने के लिए, भाई बताओ तो आपको ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाएगा। ऐसे ही बाबा बोलते थे कि जैसे बड़े बड़े बोर्ड इस सेंटर के बाहर लगा दो, जिसको बाबा कहते थे कि मखमल होता है ना, नहीं किसी को जूता मारो लेकिन मखमल का मारो जो उसको चोट भी नहीं लगे, तो मतलब ऐसी पॉइंट दो जो उसको मतलब तीर भी लग जाए और चोट नहीं लगे दुख नहीं हो। तो बाबा ये कहते थे कि जैसे बाहर बोर्ड पे लिख दो कि मनुष्य होके इस संसार रूपी ड्रामा का एक्टर होके और जो इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानता है ड्रामा की कहानी को मुख्य एक्टर को डायरेक्टर को तो वो इडियट है। तो अंग्रेजी में इडियट बहुत स्ट्रांग शब्द है ना, भाई एकदम मूर्ख है बेवकूफ है, तो बोला ऐसे लिख दो। तो बाबा कहते थे कि जो भी पढ़ेगा तो वो आएगा ना अंदर पूछने कि ये आपने क्या लिखा है क्यों लिखा है इसका क्या मतलब है, तो ऐसे ऐसे मतलब आपको उसको ज्ञान सुनाने का मौका मिलेगा, युक्ति ऐसे रचो। तो इसी ढंग से जैसे बाबा को मैंने बताया कि बहुत ही निरअहंकारी थे बाबा, तो कभी भी बाबा जैसे अभी तो हम एक दूसरे को फूल देते हैं गुलदस्ता देते हैं माला भी पहनाते हैं फूलों की वर्षा भी करते हैं, लेकिन बाबा को ये सब पसंद नहीं था, बाबा मना करते थे। तो कोई भी फूलों का गुलदस्ता लाते थे ना तो बाबा लेते नहीं थे, बाबा कहते थे मुझे ये जड़ फूल नहीं चाहिए, तो मेरे को चैतन्य फूलों का गुलदस्ता चाहिए, कि आप और आत्माएं जो कांटे मिसल बन गए ना, उनको फूल बना के और वो गुलदस्ता मेरे सामने लाओ। और जैसे हम पार्टी जो ग्रुप आते थे तो साधारण रूप में जैसे परिचय लिया जाता है ना, अब समझो आपके शहर में भी कोई आता है तो उसका परिचय लेने के लिए, अब जैसे दिल्ली में कोई आएगा हमारे पास, विदेश से आएगा, बाहर से आएगा, तो हम उससे पूछते हैं भाई आप दिल्ली में पहली बार आए हो, तो भाई पहली बार आए हो तो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, दिल्ली देखो। तो ऐसे ही बाबा साधारण रूप से पूछते थे कि जो भी ग्रुप आते थे ना, तो बाबा का पहला प्रश्न होता था कि बच्चे बाबा से पहली बार मिल रहे हो, मधुबन में पहली बार आए हो, तो है तो लौकिक दुनिया का प्रश्न जो सभी पूछते हैं ना। तो जैसे कोई बच्चे कहते थे हाँ पहली बार आए हैं, या थोड़ा जिसको मालूम होता था वो, तो ये मतलब बाबा परीक्षा लेते थे कि ज्ञान को कितना समझा है। तो जैसे मैंने बताया ना, बाबा की कोई भी बात साधारण नहीं होती थी, उसमें बहुत गुह्य राज समाया होता था जो बाद में मतलब समझ में आता था। तो बाबा ये देखते थे कि बच्चों ने ज्ञान को, जो ड्रामा का ज्ञान है वो समझा है, भाई कितना उसमें निश्चय है और ड्रामा याद है। तो राइट उत्तर उसका क्या होना चाहिए? ऐसे तो कहेंगे हम अनेक बार आए हैं, मतलब हर कल्प में मिलते रहे हैं, लेकिन राइट उत्तर एक्यूरेट बाबा के सिखलाते थे कि इस कल्प में पहली बार आए हैं। ऐसे तो अनेक बार आए हैं मधुबन में, लेकिन इस कल्प में पहली बार मिल रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बाबा का ये होता था, जैसे परिचय के लिए जो युगल होते थे प्रवृत्ति मार्ग वाले, कि आपके कितने बच्चे हैं, तो ये भी साधारण रूप से भी बाबा जैसे परिचय पूछ रहे हैं। लेकिन उसमें भी बाबा का राज ये होता था, पूछने का मतलब ये परीक्षा, कि बाबा को बच्चा बनाया है, बाबा कहते ना मेरे से सर्व संबंध जोड़ो। तो जैसे पति पत्नी सामने होते थे तो पति बोलेगा तीन बच्चे हैं, फिर बोलेंगे नहीं नहीं चार बच्चे हैं, फिर उनको बाबा बाद में याद आता था, क्योंकि लौकिक तो भूलते नहीं है ना कभी भी, उसमें तो मोह होता है भी मेरे बच्चे, लेकिन फिर कहेंगे नहीं नहीं चार, मतलब बाद में याद आता था। तो ऐसे बाबा परीक्षा लेते थे, और जब अगर पूरा ही ग्रुप रॉन्ग उत्तर दे, मतलब ड्रामा का ज्ञान भी नहीं है, बाबा को बच्चा भी नहीं बनाया, तो फिर बाबा उन बच्चों को फेल नहीं करते थे, लेकिन जो टीचर लेके आती थी ना ब्राह्मणी, उसको बोलते थे कि तुम फेल हो, तुमने इनको ठीक पाठ नहीं पढ़ाया है। तो अब हम बहने फिर सोचते थे, जैसे हम भी बाद में बड़े हो गए, ग्रुप्स लाने लगे, तो फिर सब बहनों को लगा भी ये तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है ना, भी बाबा हमें फेल कर देता है। तो फिर 24 घंटे ट्रेन में लगते थे, तब दिल्ली से जनता ट्रेन आती थी, तो फिर ट्रेन में सबको हम पाठ पक्का कराते थे कि बाबा ये सवाल पूछेंगे ये जवाब देना है, तो उनको सिखा के आते थे। तो फिर बाबा जब आए तो सभी ने राइट उत्तर दिया, तो बाबा समझ गए। तो बाबा ने फिर बोला कि ये बच्चों को ट्रेन में अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो बाबा ने कहा ये बाबा को जैसे मालूम पड़ गया। तो इस ढंग से जैसे हंसते बहलते थे, और रात्रि क्लास में पहले मम्मा आती थी, यही हिस्ट्री हॉल का ही मुझे याद है कि मम्मा आके इधर बैठती थी इस गद्दी पे, और मम्मा पहले सब बच्चों की कचहरी होती थी अधिकतर रात्रि क्लास में, मतलब सेल्वेशन चाहिए, सबके पास सब कुछ है, कि तब तो मई जून में भी हम आते थे ना तो यहाँ ठंड होती थी, अभी तो पंखे और ये सब कूलर उस समय पे कुछ भी नहीं था, तो भाई कंबल है, किसी को कुछ चीज चाहिए, ये सब पहले पूछा जाता था, और फिर कचहरी होती थी, तो उसमें भी दो सवाल मुख्य पूछे जाते थे। तो मम्मा जैसे पूछती थी कि अगर सारे दिन में किसी ने कोई भूल की है तो वो सुनाओ अपनी भूल, तो अब सारी सभा में एक तो अपनी भूल पहले चेक करें, रियलाइज करें, और फिर सारी सभा में देही अभिमानी बन के सुनाएं, तो ये परीक्षा होती थी कि कितना देही अभिमानी बन के सुनाते हैं, सच बोलते हैं नहीं बोलते हैं। फिर दूसरा सवाल ये होता था कि अगर किसी ने दूसरे को भूल करते हुए देखा है तो वो बताओ। तो समझो कोई खड़ा होके सुनाता था कि भाई उसने उसके साथ झगड़ा किया, उसने ये गलत काम किया, ये किया, तो उसको ये नहीं मालूम पड़ता था कि मैं दूसरे की भूल सुना रहा हूँ लेकिन ये मेरी भी परीक्षा हो रही है। तो मम्मा उसका चेहरे का हाव भाव और बोलने का ढंग वो सब देखती थी, तो परीक्षा उसकी होती थी कि भाई जो सुना रहा है वो किस भाव से सुना रहा है, कल्याण की भावना से सुना रहा है, उसका कल्याण हो जाए, या उसको ईर्ष्यावश या बदला लेने की भावना या नीचा दिखाने के लिए सुना रहा है। कि दूसरे की कंप्लेन ऐसे भी करते हैं ना, सभा में हम सब उसकी गलती सुनाएंगे तो जैसे सबको मालूम पड़ेगा, तो अंदर में ईर्ष्या होती है या उसका बदला या नीचा दिखाने के लिए। तो भावना शुभ है या अशुभ है, तो वो जैसे मम्मा तो जो सुना रहा होता था उसको नहीं पता कि मैं दूसरे की सुना रहा हूँ लेकिन यहाँ मेरा अपना ही वो सामने दर्पण में चीज आ रही है। तो फिर मम्मा पहले सारा पूछ लेती थी और फिर बाबा आते थे और जनरल बाबा फिर पूछते थे सार रूप में कि कचहरी में क्या हुआ। तो उस दिन की जो भी कोई मोटी मोटी भूलें, भाई किसी ने गुस्सा किया, किसी ने परचिंतन किया या कुछ भी ऐसे होता था ना, दो चार बातें, तो वो मम्मा सार रूप में बाबा को सुनाती थी और फिर बाबा उस पर धारणा का क्लास कराते थे। तो रात्रि क्लास ऐसे होता था जैसे परिवार में फैमिली में बैठे हैं, तो सुबह तो ऑफिशियल रूप बाबा का जैसे टीचर सुप्रीम टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, सतगुरु के रूप में श्रीमत दे रहे हैं, वो रूप होता था बहुत ऑफिशियल। लेकिन रात्रि क्लास में जैसे अपने परिवार में बैठे हैं और माँ बाप जैसे बच्चों को कोई बात समझाते हैं प्यार से, तो ऐसे फिर होता था। और आप सबको ये तो मालूम है कि बाबा जैसे खुद हर कमरे में जाते थे, जो हम बच्चे जहाँ ठहरते थे ना, तो आजकल तो होता है जैसे कोई मेहमान आएंगे कोई आएंगे तो हम किसी को भी बोलेंगे जाके देखो भाई कमरा ठीक है, लेकिन बाबा दूसरे को नहीं ड्यूटी देते थे, खुद जाके बाबा जैसे कहते ना मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा को सिर्फ सूक्ष्म पालना ज्ञान से बच्चों की पालना करें सेवा करें वो भी था, लेकिन स्थूल में भी मतलब बाबा को इतना प्यार था कि मैं बच्चों की सेवा करूं, तो स्थूल रूप में भी हर बात का ध्यान रखते थे। तो कमरे में जाके भाई सबके पास चादर है, कंबल है, बिस्तर ठीक है, कोई चीज तो नहीं चाहिए, और मच्छर होते थे जैसे यहाँ पर बहुत, तो लच्छू दादी उन बाबा के साथ जाती थी, वो जो होता है ना कुछ धूप जगा के वो करते हैं तो जिससे मच्छर भाग जाए। और ऐसे ही बाबा खुद सबको चाय पिलाते थे, अभी तो जैसे चाय की बड़ी बड़ी टंकी रख देते हैं ना, लेकिन उस समय पर इतनी बड़ी केतली बाबा अपने हाथ में लेके, जैसे हम लोग नाश्ते पे जाते थे तो बाबा खुद बैठकर बाबा प्यार से बुलाते थे, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, और सब अपना अपना ग्लास लेके जाते थे और बाबा अपने हाथ से सबको चाय सर्व करते थे। तो जैसे वो बहुत अच्छा, मतलब जैसे लौकिक बाप से भी ज्यादा प्यार बाबा ने हम सबको दिया, ऐसा हमको अनुभव होता था। तो एक बार दिल्ली में भी बाबा आए थे और 1000 संडे की क्लास में 1000 भाई बहने थे सुबह, तो जैसे नाश्ता हुआ और बाबा एक बहुत बड़ी टेबल थी उसके ऊपर बाबा खड़े हो गए और 1 घंटा, आप समझ 1000 को चाय देने में कितना टाइम लगा होगा, एक एक बच्चा आएगा उसको बाबा इतनी बड़ी केतलो चाय जैसे डालेंगे, इतना समय लगता है। तो ऐसे मतलब हमने बाबा के चरित्र देखे और बाबा के वरदान जो हमको मिले, पालना मिली, तो उसी से ही पल रहे। ओम शांति।